Priya Maitreya Nagarjun. Bhai or Beno. Namo Buddhaye. Jai Bhim. I hope you all enjoyed the rain falling.
मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने यह जो वर्षा हुई है उसका आनंद लिया होगा.
I think it's a promise of the rain of the Dhamma that's going to fall over these next 4 days.
शायद यह वो वादा है कि धम्म की वर्षा भी यहाँ होने वाली है.
When the rain falls, it refreshes the ground, it refreshes the trees.
जब वर्षा आती है तो यह पेड़ों को और सभी बीजों को अंकुरित करती है, तरोताजा करती है.
When the rain of the Dhamma falls on our hearts, they come to life.
जब धम्म वर्षा हमारे मन के ऊपर होती है तो हमारे मन में भी एक नया जीवन आता है.
So I hope that during these next 4 days we're going to have a proper monsoon of Dhamma.
तो आने वाले 4 दिनों में धम्म का मानसून आने वाला है.
So Maitreya Nagarjun said beforehand, please, what is your subject?
तो मैत्रीवीर नागार्जुन ने कहा कि आपके बोलने से पहले आपका विषय क्या है यह मुझे पता नहीं है.
I said, you wait and see.
और मैंने उनको कहा कि आप अब राह देखिए और देखिए.
I like to keep it a surprise even for him.
तो यह जो आश्चर्य था मेरे लिए भी उन्होंने बरकरार रखा.
But my subject is a very interesting one.
लेकिन मेरा जो विषय है यह बहुत रुचकर है.
I think probably everybody here knows that Dr. Babasaheb Ambedkar made many, many important statements.
आप सब लोगों को शायद यह ज्ञात होगा कि बाबा साहब ने इस भूमि पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान या वाक्य किए हैं.
But there's a statement that he made that really interested me.
और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ वाक्य है वो मेरे लिए काफी महत्व रखता है. वो ऐसा है.
He said that Dhamma Seva is the foundation of the Dhamma Revolution.
Dhamma Seva is the foundation of Dhamma Revolution.
That's right, isn't it?
उन्होंने कहा कि नया या धम्म सेवक निर्माण करना यह धम्म क्रांति का सार है.
This is what he said.
यही उन्होंने कहा.
The Dhamma Revolution is founded on Dhamma Seva.
क्योंकि धम्म क्रांति जो है उस धम्म को जो आचरण करेंगे उनके ऊपर ही बुनियादित है.
And this is what I want to explore over these 4 days.
और आने वाले 4 दिनों में मैं उसको उजागर करना चाहता हूँ.
Because if we want the Dhamma Revolution, then we need to create its foundation.
अगर हमें धम्म क्रांति चाहिए तो हमें उसकी बुनियाद भी निर्माण करनी है.
If you want a house, you have to start with the foundations.
अगर आपको घर चाहिए तो आपको उसके पहिए से उसकी शुरुआत करनी होगी.
If you put the roof up before you put the foundations down, the house will fall.
अगर आपने पहले उसकी छत गढ़ दी तो बिना पहिए के वह घर गिर जाएगा.
If we want the Dhamma Revolution, we need to create its foundations.
अगर हमें धम्म क्रांति चाहिए तो हमें उसकी बुनियाद निर्माण करनी होगी.
Well, we want the Dhamma Revolution, I think.
शायद आप सब लोगों को धम्म क्रांति चाहिए.
Yeah. First of all, of course, we need to be quite clear what it means.
लेकिन उसके पहले हमें जानना होगा कि इसका अर्थ क्या है.
Probably all of you do know.
शायद आप सब लोगों को यह पता होगा.
But let me just spell it out very briefly.
लेकिन मुझे बताने दीजिए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है.
What is the Dhamma Revolution?
धम्म क्रांति का अर्थ क्या है?
It's a change in Indian society.
भारतीय समाज व्यवस्था में परिवर्तन यह धम्म क्रांति का अर्थ है.
It's the emergence in India of liberty, equality and fraternity.
यहाँ पे समता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रस्थापित करने की जरूरत है.
Not just in the constitution.
केवल संविधान में ही नहीं.
But in Indian society.
लेकिन समूचे भारतीय समाज में.
Not just in India.
केवल भारत में ही नहीं.
But all over the world.
समूचे विश्व में.
That's what the Dhamma Revolution is.
यही धम्म क्रांति का अर्थ है.
Actually, it applies just as much in my country, in the United Kingdom, as it does here in the Republic of India.
जितना भारत के सार्वभौमिक राष्ट्र में इसकी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता मेरे भी देश में है.
The Dhamma Revolution means changing society on the basis of the Dhamma.
धम्म क्रांति का अर्थ यह है कि समाज परिवर्तन लाना धम्म की बुनियाद पर.
So that what we have is the Dhamma Rajya.
तो हमें क्या चाहिए कि धम्म राज्य चाहिए.
A society, a country that is based on sacred and universal principles.
ऐसा राष्ट्र जो पवित्र और वैश्विक मूल्यों के ऊपर जिसकी बुनियाद हो, जिसकी आधार हो.
You see at the center of the Indian flag, the Ashok Chakra.
आपने तिरंगे झंडे के केंद्र में देखा होगा, वहाँ अशोक चक्र है.
Baba Sahib made sure that was there.
बाबा साहब ने इस बात को भली भांति जानकर उसे वहां रखा.
That signifies the rule of the Dhamma.
वह महत्व देता है कि धम्म का राज्य क्या है.
Not the rule of caste.
जाति का राज्य नहीं.
Not the rule of party.
और या किसी पार्टी का राज्य नहीं.
Not the rule of one individual over others.
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर राज्य नहीं.
Not the rule of one nation over another nation.
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के ऊपर हावी होना नहीं.
But the reign of universal and sacred principles.
लेकिन उसका राज्य जो वैश्विक हो और पवित्र हो.
So that everyone is free.
ताकि हर व्यक्ति मुक्त हो.
Everyone can lead the kind of life that is best for them.
हर व्यक्ति वह जीवन जी सके जो जीवन वो जीना चाहते.
Everyone is equal.
हर व्यक्ति समान हो.
They're treated as individuals, valued in their own right.
अपने हकों में या अपने जीवन में वे अपने आप को मुक्त व्यक्ति महसूस कर सके.
This respect, bandhutva between individuals.
हर व्यक्ति में आदर हो, बंधुत्व हो.
So that each citizen sees the other citizen as their brother or sister.
ताकि हर नागरिक दूसरे नागरिक को एक भाई या बहन के दृष्टिकोण से देखे.
Dhammaraja means a society based on the principles of Shila and of Maitri.
और धम्म राज्य वह राज्य है जिसकी बुनियाद शील और मैत्री है.
Dhamma is the only basis for this kind of society.
और इस प्रकार का समाज निर्माण करने के लिए धम्म ही एकमात्र बुनियाद हो सकती है.
If we don't have some higher principle to serve, we would just serve I.
अगर हमें कोई उच्च मूल्य सेवा करने के लिए या आचरण करने के लिए ना हो, तो हम केवल अपने अहंकार की ही सेवा करेंगे.
We would just serve our own interest, our own caste, our own community, our own family.
हम केवल अपने स्व को, अपने जाति को, अपने समुदाय को या अपने परिवार की ही हम सेवा करने में लगे होंगे.
There has to be a principle that goes beyond us as individuals.
एक ऐसा तत्व हमारे जीवन में चाहिए जो हमारे व्यक्ति से परे, अपने अहंकार से परे हो.
So that's what the Dhamma revolution is.
यही धम्म क्रांति का अर्थ है.
It's a revolution from a society that is divided, that is fractured, that is hierarchical.
यह ऐसी क्रांति है उसके विरोध में जो समाज बटा हुआ है, ऊंच नीचता के ऊपर आधारित है, असमानता के ऊपर आधारित है.
A society where people can't live as is best for them.
ऐसा समाज जहाँ पे व्यक्ति जो स्वयं के लिए श्रेष्ठ है वैसा जीवन जी नहीं पाते हैं.
A society where one individual is above another individual.
ऐसा समाज जिसके ऊपर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी है.
A society where there's hatred and division and fraction.
ऐसा समाज जिसमें द्वेष है, विभाजन है और क्या कह सकते हैं कि बिखरा हुआ है.
We want to move from that to a society of liberty, equality and fraternity.
ऐसे समाज से हमें उस समाज की ओर बढ़ना है जो समाज समता, स्वतंत्रता और बंधुता के ऊपर आधारित है.
That in brief is what the Dhamma revolution is.
यही संक्षिप्त में धम्म क्रांति का अर्थ है.
That's what Baba Sahib launched here in 1956.
1956 में बाबा साहब ने इसी धम्म क्रांति की बुनियाद इस भूमि पर रखी.
That's why this soil is sacred here.
इसीलिए यह जो जमीन है, यह जो धरती है, यह पवित्र है.
Baba Sahib launched the Dhamma revolution here.
बाबा साहब ने धम्म क्रांति की बुनियाद यहाँ रखी.
And he said that the foundation of that Dhamma revolution is Dhamma Seva.
और बाबा साहब ने यह कहा कि उस धम्म क्रांति की जो बुनियाद है, उसका जो ढांचा है, वैसे धम्म आचरण करने वाले व्यक्ति के ऊपर आधारित है, जिसे धम्म सेवक कहते हैं.
So, what does seva mean? What does sevak mean?
तो सेवक का अर्थ क्या है?
Well, of course, when you serve someone, you subordinate your own desires, wishes, and interests to them.
तो जब आप किसी की सेवा करते हैं, तो तब आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो यानी आकांक्षाएं है उसको दूर रखकर आप औरों के प्रति सोचते हैं.
If I serve the king, I don't do what I want to do, I do what the king wants to do.
अगर मैं किसी राजा की सेवा कर रहा हूं तो मैं अपने आप की सेवा नहीं करता हूं, जो राजा चाहता है उसके हिसाब से मैं उसकी सेवा करता हूं.
When you serve the Dhamma, you subordinate your own wishes to the Dhamma. When you serve the Dhamma, you put the Dhamma's interests before your own.
तो जब आप धम्म की सेवा करते हैं तो धम्म की जो इच्छा है उस इच्छा को आप आगे रखते हैं अपने इच्छा के तुलना के बजाय.
Before your own interest, you serve the truth.
आपके इच्छा के पहले जो सत्य है उस सत्य की आप सेवा करते हैं.
Before your own interest, you serve justice.
आपके इच्छा के पहले जो न्यायिक है, जो न्याय है, आप उसकी सेवा करते हैं.
Before your own interests, you serve love.
आप अपने इच्छा के पहले जो प्रेम है, जो भाईचारा प्यार है, उसकी आप सेवा करते हैं.
That's what dhamma seva means.
उसका अर्थ है धम्म सेवा, या यही अर्थ है धम्म सेवा का.
That's what we need if we're going to build to bring the dhamma revolution.
और यह हमें करना होगा अगर हमें धम्म क्रांति की बुनियाद अगर रखनी है तो.
We may need many, many dhamma sevaks.
ऐसे हमें बहुत सारे धम्म सेवक चाहिए.
There's so much to do.
बहुत सारा कार्य करना है.
Yes, a big change has taken place in Maharashtra amongst some people.
बहुत बड़ा परिवर्तन आया महाराष्ट्र के कुछ लोगों में.
At least since 1956, the lives of you, for instance, have been changed.
1956 के पश्चात आप लोगों का जीवन है वह बदल गया.
But there are millions, crores of people all over India who still have not experienced the reign of the Dhamma on their hearts.
ऐसे कई करोड़ लोग भारत में अभी भी मौजूद है जिन्होंने जो धम्म वर्षा है उसका स्वाद नहीं लिया है.
I travel all over India.
मैं समूचे भारत में प्रवास करता हूँ.
For instance, I spend quite a lot of time in Bihar.
मैं बहुत सारा समय बिहार में बिताता हूँ.
The conditions in Bihar amongst the poorest people are terrible.
जो परिस्थिति बिहार के गरीबों की है वह बहुत ही दयनीय है, खतरनाक है.
A friend of mine was telling me that in the village he lived in, the upper caste people just killed his brother, killed others.
मेरे जो मित्र है अक्सर वो अपने गांव से आते हैं और मुझे ऐसे अनुभव बताते हैं कि किसी कारणों के कारण जो अमीर लोग होते हैं वो उनके भाइयों को बहनों को मार देते हैं.
This is going on from Kashmir to Kanyakumari.
कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह सब हो रहा है.
From Punjab to Bengal.
पंजाब से बंगाल तक यह सब हो रहा है.
All over India, this is still going on.
समूचे भारत में यह जो घटनाएं हैं यह होती जा रही है.
So many people all over India have never even heard of Baba Saheb.
बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं उन्होंने शायद बाबा साहब के बारे में सुना भी नहीं है.
So few people have heard of the Buddha Dhamma.
बहुत ही कम लोगों ने बौद्ध धम्म के बारे में सुना है.
We need Dhamma Sevaks to take Baba Saheb's message of Dhamma revolution all over India.
तो हमें ऐसे धम्म सेवक चाहिए जो बाबा साहब के धम्म क्रांति का जो संदेश है वो पूरे भारत वर्ष में फैला सके.
So in these talks, I want to explore how we make ourselves into Dhamma Sevaks.
तो आने वाले प्रवचनों में मैं यह भी बताने वाला हूँ कि धम्म सेवक कैसे होने चाहिए.
Maybe you're already serving the Dhamma.
शायद आप लोग धम्म सेवक होंगे.
I try to serve the Dhamma.
मैं धम्म की सेवा करने की कोशिश करता
हूँ. But however much we serve the Dhamma, we can always serve more and better.
लेकिन कितनी भी हम धम्म की सेवा करें, हम उससे अधिक अच्छा हम कर सकते हैं.
So I want to explore what we need to do to be really good Dhamma sevaks.
तो हमें इस बात को उजागर करना है कि कैसे अच्छे हम धम्म सेवक हो सकते हैं.
I hope that will inspire you.
मुझे आशा है यह आपको प्रेरित करेगा.
I hope that will give you a clear idea of what you need to do.
या शायद आपको यह स्पष्ट कल्पना देगा कि आपको क्या करना चाहिए.
There are four things we need to do.
तो चार बातें हैं जो हमें करनी चाहिए.
We need to know the Dhamma.
हमें सबसे पहले धम्म को जानना है.
You can't be a Dhamma Sevak if you don't know what you're serving.
आप धम्म सेवक नहीं हो सकते अगर आप धम्म नहीं जानते या धम्म की सेवा कैसे करते हैं यह अगर आप नहीं जानते.
If you don't know what the Dhamma is, how can you serve the Dhamma?
If you don't know the Dhamma.
If you don't know what the Dhamma is, how can you serve it?
अगर आपको धम्म पता नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं?
So if you want to serve the Dhamma, you must know the Dhamma.
तो अगर आप धम्म की सेवा करना चाहते हैं तो आपको धम्म को जानना जरूरी है.
If you want to serve the Dhamma, secondly, you must practice Dhamma.
और अगर आप धम्म की सेवा करना चाहते हैं तो दूसरी बात यह है कि आपने धम्म का आचरण करना जरूरी है.
The Dhamma is a path of transformation.
धम्म एक ऐसा मार्ग है जो परिवर्तित करता है.
Through the Dhamma you change yourself.
धम्म के माध्यम से हम अपने आप को बदलते हैं.
So you need to put it into practice.
तो इसीलिए उसे आचरण में रखना जरूरी है.
You need to actively practice the Dhamma.
सक्रिय होकर धम्म का आचरण करना जरूरी है.
Just knowledge is useless.
केवल उसका ज्ञान होना निरुपयोगी है.
If you're a doctor and you don't practice medicine, you're useless.
अगर डॉक्टर है और आप अगर मेडिसिन नहीं देते तो आपका जो ज्ञान है वह निरुपयोगी है.
So we need to practice the Dhamma.
इसलिए हमें धम्म का आचरण करना जरूरी है.
Thirdly, we need to find friends in the Dhamma.
तीसरी बात, धम्म में हमें मित्र ढूंढना जरूरी है.
If we're just on our own, it's very, very difficult to serve the Dhamma.
अगर हम केवल अकेले हैं, तो फिर धम्म की सेवा करना बहुत कठिन है.
It's not just that it's difficult. In a way, you could say it's impossible.
यह केवल कठिन नहीं है, यह थोड़ा असंभव भी है.
Yes, the Buddha gained enlightenment by himself.
बुद्ध ने अपने स्वयं के प्रयासों से बुद्धत्व की प्राप्ति की, संबोधि की प्राप्ति की.
But as soon as he could, he formed a sangha.
लेकिन जितना जल्दी हो सके उन्होंने संघ की भी निर्मिति की.
A sangha is the essence of dhamma practice.
धम्म आचरण का संघ सार है.
We need to find a sangha.
हमें संघ को ढूंढना आवश्यक है.
In that sangha, we can know the dhamma and practice the dhamma.
और उस संघ में हम संघ को जान सकते हैं, संघ का आचरण कर सकते हैं.
But there's one more thing.
लेकिन और एक बात है.
We can't just keep the Dhamma to ourselves.
धम्म को हम केवल अपने आप तक ही सीमित नहीं रख सकते.
Yes, it would be very good if we know the Dhamma.
यह बहुत अच्छी बात है अगर हम धम्म को जानते हैं.
Very good if we practice the Dhamma.
यह भी बहुत अच्छी बात है अगर हम धम्म का आचरण करते हैं.
Very good if we're part of a sangha.
और यह भी अच्छी बात है अगर हम किसी संघ के सदस्य हैं.
But what about the rest of India?
लेकिन जो उर्वरित या बचा हुआ जो भारत है उसका क्या?
What about all those crores of people who've never felt the rain of the Dhamma refreshing them?
उन करोड़ों करोड़ों लोगों का क्या जिन्होंने धम्म को ठीक से जाना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है?
We need to spread Dhamma.
हमें धम्म का प्रसार प्रचार करना चाहिए.
So these are the four things I'll be dealing with in these four talks.
तो आने वाले चार दिनों में इन चार बातों को मैं गहराई से बताने वाला हूँ.
We need to know Dhamma.
सबसे पहले हमें धम्म को जानना है.
We need to practice Dhamma.
धम्म का आचरण हम कैसे करें या धम्म का आचरण करना.
We need to find friends in the Dhamma.
धम्म में हम मित्रों को कैसे चुने, कैसे देखे.
And we need to spread the Dhamma to others.
और धम्म का प्रसार प्रचार औरों के लिए करना.
So, today my theme is knowing Dhamma.
तो आज के प्रवचन मालिका का मेरा विषय है धम्म को जानना.
My question is, what is Dhamma?
तो मेरा प्रश्न यह है कि धम्म क्या है?
That is a very, very big question.
यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है.
And it's not really possible to answer it in just half an hour or so.
अब यह आधे घंटे में इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा.
In a way, it's not really possible to answer it at all.
और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका जवाब देना बिल्कुल नामुमकिन है आधे घंटे में.
The Dhamma isn't just a piece of intellectual knowledge.
क्योंकि धम्म केवल बुद्धिमत्ता का जो ज्ञान है उतना ही नहीं है.
The Dhamma is the direct experience of the way things truly are.
चीजें जैसी है वैसी उन्हें देखना उसका अनुभव धम्म है.
It's not to be understood intellectually.
यह केवल बुद्धिमत्ता से समझा नहीं जा सकता.
Yes, intellectual understanding will help us.
बुद्धिवाद जो है या बुद्धिमत्ता जो है वह समझने के लिए हमें मददशील हो सकती है.
In the end, you have to see it yourself.
अंततः आपको उसे अपने अनुभव के आधार पर ही देखना होता है.
It's a bit like you might ask me, what is London like?
अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि लंदन कैसा है?
Maybe some of you have been to London, but many of you haven't.
आप में से कुछ लोग लंदन गए हो, लेकिन कुछ लोग नहीं गए हो.
Well, you've maybe seen pictures of London.
अब आपने लंदन या जो शहर है इसकी तस्वीरें देखी होगी.
I can tell you this fact and that fact about London.
मैं यह तथ्य, वह तथ्य, यह बात, वह बात लंदन के बारे में बता सकता हूँ.
I can tell you what the atmosphere is like.
और मैं बता सकता हूँ वहाँ का, उस शहर का वातावरण कैसा है.
I can tell you what the streets are like.
और मैं बता सकता हूँ उसके रास्ते कैसे हैं.
But until you actually go to London, you won't know what it's like.
लेकिन जब तक आप उस शहर में जाएंगे नहीं, उस शहर को आप जानेंगे नहीं.
I came to India first in 1985.
In India.
I came to India.
मैं भारत में सबसे पहले 1985 में आया.
I'd heard a lot about India.
मैं भारत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था.
I'd read a lot about India.
और भारत के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था.
But still, when I arrived in Bombay as it was then, it was a surprise to me.
लेकिन फिर भी जब मैं मुंबई में आया 1985 में, मेरे लिए वह आश्चर्य था.
Because knowledge is different from experience.
क्योंकि आपका जो ज्ञान है वह आपके अनुभव से भिन्न है.
Well, it's in a sense the same with the Dhamma.
और यही बात धम्म के साथ भी है.
You have to see the Dhamma, if you like, with your own Dhamma eyes.
धम्म को आपके अपने आंखों से ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने धम्म के आंख से उसे आपको देखना है.
You have to experience it directly.
आपको प्रत्यक्ष अनुभव से उसे देखना है.
Whatever I say about it is just words.
जो कुछ भी मैं कहूंगा वो केवल मात्र शब्द हो सकते हैं.
The best I can hope is that those words will help us to see directly.
क्या हो सकता है कि इन शब्दों के माध्यम से आपका जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसके करीब मैं आपको ले जा सकता हूँ.
The Dhamma isn't just the Buddha's teaching.
धम्म केवल बुद्ध की शिक्षा ही है, ऐसा नहीं है.
When he sat under the Bodhi tree, he woke up.
जब वे बोधि वृक्ष के तले बैठे, वे जागृत हुए, सजग हुए.
That's what Bodhi means. It means awakening.
बोधि का यही अर्थ है, जागरूकता या सजगता.
He woke from the dream of our ordinary reality.
सामान्य सत्यता के स्वप्न से बुद्ध जाग चुके थे.
If the Buddha is awake, we are all asleep, brothers and sisters.
अगर बुद्ध जागृत है तो इसका अर्थ यह भी है भाई और बहनों कि हम सब लोग सो रहे हैं.
The Dhamma is what you see when you wake up.
तो धम्म वह है जब आप देखते हैं, जब आप जाग जाते हैं.
Of course, you've still got trees, you've still got flowers, you've still got people.
निश्चित रूप से तब भी पेड़ पौधे लोग होते हैं.
It's not a different world.
अब आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है.
But through your direct experience, you understand what that world really is.
लेकिन आपके प्रत्यक्ष अनुभव से जिस दुनिया में आप हैं, उस दुनिया को सही मायने में जानते हैं.
You see the cosmic principle that underlies everything.
जो वैश्विक तत्व है उसके सतह में, उनको आप जानना शुरू करते हैं.
And that is to be experienced directly with prajna.
और वह हम सीधे अपने प्रज्ञा से उसका अनुभव ले सकते हैं.
Not just with our intellect.
केवल अपने बुद्धिवाद से उसको जानना नहीं.
Well, if you've got prajna, you already know what I'm talking about.
अगर आपके पास प्रज्ञा है तो आप शायद जान चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
If you haven't got prajna, well, we'll have to proceed with words.
अगर हमारे पास प्रज्ञा नहीं है तो फिर शब्दों के माध्यम से हमें इसे समझना होगा.
We'll have to try to understand just by thinking.
और जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है उस सोचने की प्रक्रिया से हमें इसे समझना होगा.
So what is the Dhamma?
तो फिर से यह सवाल है कि धम्म क्या है?
If we're going to express the Dhamma in words, what is it?
अगर हमें शब्दों में उसे बताना है तो फिर धम्म क्या है?
The Dhamma is the recognition that everything arises in dependence on conditions.
Dhamma is चीज को पहचानना है कि जो कुछ भी परिस्थिति है, जिस किसी भी चीज का उगम हो रहा है, वह परिस्थिति सापेक्ष है.
Whatever happens happens because of previous conditions.
जो कुछ भी होता है उसके पहले की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के द्वारा ही वह होता है.
Well, you know, many people believe that what happens is because of God.
आप सब लोग जानते होंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर के कारण भगवान के कारण हो रहा है ऐसा लोग मानते हैं.
If you get some good fortune, you think it's because of God.
अगर आपको कुछ अच्छा नसीब होता है तो आप जानते हैं कि यह नसीब मेरा भगवान के कारण है, ईश्वर के कारण है.
If you want something, you pray to God and ask Him to give it to you.
अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आप फिर उसकी आराधना करते हैं और चाहते हैं कि ये मुझे मिले.
That's what some people think.
ऐसा कुछ लोग सोचते हैं.
In other words, they think that things arise in dependence on God.
तो दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे रखूं तो उसे ऐसे कहा जाएगा कि परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही है वह ईश्वर के आधार पर हो रही है.
Other people think that it's all chance.
या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि यह केवल मौका है.
Anything can happen.
कुछ भी हो सकता है.
It doesn't matter what the conditions are, anything can happen.
कुछ भी परिस्थितियां रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है.
But the Buddha said no.
लेकिन बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है.
And this was a real revolution in human thinking.
मानवीय विचार में यह सबसे बड़ी क्रांति है.
He said that everything that happens because of certain conditions.
वो कहते हैं कि हर चीज किसी परिस्थितियों के द्वारा होती है, उसके आधार पर होती है.
Just a few days ago, there was nothing here.
कुछ दिनों पहले इस जमीन पर कुछ नहीं था.
People were just playing cricket here.
यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे.
And there was no dome.
यहाँ पे यह तंबू नहीं था.
No fans.
यहाँ फैन नहीं थे.
No carpets.
यह कारपेट नहीं थी.
No audience.
आप भी नहीं थे.
No Maitreevir Nagarjun.
मैत्रीवीर नागार्जुन भी नहीं थे. सुबुति भी नहीं थे.
हाँ, बराबर. Nothing was here.
तो कुछ भी यहाँ नहीं था.
There was just a field with people playing cricket.
यहाँ केवल एक जमीन थी, लोग उस पे क्रिकेट खेल रहे थे.
But then a lot of work went into setting up this dome.
लेकिन बहुत सारा श्रम जो है इसमें गया.
A lot of work went into getting the money for it.
बहुत सारा पैसा इसमें गया.
A lot of work went into putting out advertisements. A lot of work went into advertising.
हाँ, बहुत सारा जो पैसा है उसकी जाहिरात करने में, इसकी
not just paisa but work, काम.
काम भी गया.
And you saw these advertisements, huh?
और आपने यह जो जाहिरात है या जो advertisement है यह आपने देखा होगा.
And then you thought, oh, that looks interesting.
और आपने सोचा होगा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है.
I don't know why, but you thought maybe that's interesting.
अब मुझे पता नहीं कि यह सब अच्छा क्यों है, लेकिन आपने ऐसा सोचा.
So you thought, well, let me come.
तो आपने सोचा कि चलो मुझे जाना चाहिए.
You had to make certain arrangements. Huh?
आपको कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ी यहाँ आने के लिए.
You had to catch a bus. You had to get on your rickshaw. You had to get on your bike. Huh?
तो आपके पास जो भी साधन है, रिक्शा, ऑटो, कार, उसके द्वारा आप यहाँ तक आए.
You had to get in your car or walk.
आपको चलना पड़ा होगा.
All these conditions came together, and here we are.
तो इन सब परिस्थितियों के कारण आज हम यहाँ हैं, यह परिस्थिति है.
Some God didn't put me here.
अब किसी ईश्वर ने या भगवान ने मुझे यहाँ नहीं रखा.
I'm not sure about Maitreevir Nagarjun. I'm not sure about you.
तो मुझे पता नहीं आपको भगवान ने रखा या मुझे भगवान ने रखा. No, लेकिन सुबुति को भगवान ने नहीं रखा.
I'm quite convinced you didn't here become because you just dropped from the sky.
तो इस बात से मैं भली भांति परिचित हूँ कि आप आसमान से यहाँ नहीं टपके.
You know, some lotus didn't come down and drop you on the ground. Huh?
तो ऐसा कोई नाटकी स्वरूप से, कोई ऐसा कमल के फूल से आप यहाँ उतरे नहीं है.
No, you had to walk.
आपको चलना पड़ा.
Conditions had to be created that brought you here.
तो परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ा आपको यहाँ आने के लिए.
Everything is like that.
हर चीज वैसी ही है.
Comes into existence, passes away.
उसके अस्तित्व में आती है और फिर वो चली जाती है.
In a little while, I'll stop talking.
और थोड़ी देर के बाद मेरा प्रवचन खत्म हो जाएगा.
Slightly after me, he'll stop.
और सुबुति के बाद मैं नहीं रुकूंगा. मैं रुकूंगा.
We will all go.
हम सब लोग चले जाएंगे.
At the end of on the 10th in the evening, everything will start to come down.
तो शाम हो जाएगी और सब यहाँ यानी अंधेरा धीरे धीरे आएगा.
On the 11th or the 12th, they'll be playing cricket here again.
11 या 12 तारीख को फिर से लोग यहाँ क्रिकेट खेलेंगे.
Things come into existence in dependence on conditions.
चीजें परिस्थिति के द्वारा उत्पन्न होती है.
They pass away when those conditions go.
जब वो परिस्थितियाँ चली जाती है वह परिस्थिति भी दूर चली जाती है.
This applies to everything.
और यह जो नियम है यह हर चीज के लिए है.
It applies to this. That arose in dependence on conditions.
तो यह आवाज भी किसी परिस्थिति के कारण आता है.
Two fingers snapping together, gone.
दो उंगलियां आवाज करती है और वो चली जाती है.
It applies to this very earth underneath our feet.
आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं उस जमीन के लिए भी यही नियम लागू है.
Billions of years ago, there was no planet.
करोड़ों साल पहले यहाँ पे यह ग्रह नहीं था.
There was the Big Bang.
कुछ तो भी बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते वह हुई.
The universe as we know it came into existence.
और एक विश्व का उस परिस्थिति के कारण निर्माण हुआ.
Slowly, this planet emerged.
और धीरे धीरे यह पृथ्वी जो है अस्तित्व में आई.
One day, this planet will be burned up by the sun.
एक दिन यह भी आएगा कि सूरज के द्वारा यह पृथ्वी जल भी जाएगी.
Just like that sound.
जैसे यह चुटकी भर का आवाज है उसके जैसे.
Comes, it goes.
यह आती है और चली जाती है.
This was the Buddha's teaching.
यही बुद्ध की शिक्षा.
There's nothing that stands still.
ऐसी कोई भी बात नहीं है इस विश्व में जो नित्य है.
There's nothing that's fixed.
कोई भी बात नित्य नहीं है, पक्की नहीं है.
There are no eternal gods in the sky.
ऐसा कोई अमर या कभी भी खत्म न होने वाला भगवान नहीं है या ईश्वर नहीं है.
There's no permanent I.
ऐसी कोई भी नित्य आत्मा हमारे बीच या स्व हमारे बीच नहीं है.
It's just a constant flow of conditions.
परिस्थितियों का निरंतर प्रवाह है.
And well, those conditions obey laws.
और यह जो परिस्थितियां है किन नियमों का पालन करती है.
Everything happens in accordance with certain conditioned laws.
ऐसे कुछ परिस्थिति सापेक्ष या परिस्थिति के नियम है जिसके द्वारा यह प्रक्रिया होती है.
This was why Baba Sahib turned to the Buddha Dhamma.
और यही कारण है क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धम्म चुना.
Because the Buddha Dhamma is, if you like, empirical. It's scientific.
दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बौद्ध धम्म वैज्ञानिक है.
It obeys laws.
यह नियमों का पालन करता है.
So let's have a look at these.
अब आइए इन्हें देखते हैं.
We can look at them in our own bodies.
यह हम अपने शरीर में देख सकते हैं.
Baba Sahib has a very good exposition of this in the Buddha and his Dhamma.
और बुद्ध और उनका धम्म यह जो ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा इसमें यह बात वह बताते हैं.
Our bodies obey the laws of physics.
तो हमारा जो शरीर है यह किन भौतिकी नियमों का पालन करता है.
ऋतु नियम.
इसे हम
ऋतु इन बाबा साहेब्स
बाबा साहब के शब्दों में इसे ऋतु नियम वह कहते हैं.
इन पाली इट्स ऋतु नियम.
और पाली में उसे हम ऋतु नियम कहते हैं.
सो इफ आई जंप ऑफ दिस स्टेज आई विल फॉल टू द ग्राउंड.
अगर मैंने इस स्टेज से छलांग मारी तो मैं नीचे जाऊंगा.
या यू श्योर?
सुबुति ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे?
Yeah, this is the law of gravity. Huh?
तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है.
I can't rise into the sky.
मैं अगर छलांग मारूंगा तो आसमान में नहीं जाऊंगा.
No, he's bound to the ground as well.
मैं भी जमीन पे ही जाऊंगा.
We all our bodies obey the law of gravity.
तो इस तरीके से हमारा जो शरीर है यह गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करता है.
They obey the laws of thermodynamics.
और जो
thermodynamics. Newton's laws.
I know. जो thermodynamics जो है उसका हिंदी शब्द मुझे भी
याद है. ये हिंदी शब्द है?
जो thermodynamics है उन नियमों का भौतिकी नियम पालन करते हैं.
I'll give you a practical demonstration.
मैं आपको एक प्रत्यक्षिक उदाहरण दूंगा.
You see?
तो आपने देखा
मैं Don't translate that. That's well a practical law.
तो यह एक व्यवहारिक नियम है.
So our bodies in part obey the laws of physics.
तो हमारा जो शरीर है किसी भौतिकी नियमों का पालन करता है.
They obey the laws of chemistry.
जो रसायन शास्त्रीय नियम है उसका वह पालन करता है.
If I splash acid on me, it will burn my skin.
अगर मैंने आम्ल पदार्थ अपने त्वचा पर डाला तो वह जल जाएगी.
Our bodies also obey what's called Bija Niyama.
और हमारा शरीर जो है वह बीज नियमों का भी पालन करता है.
बीज नियम means the laws of biology, the laws of botany.
तो वनस्पति शास्त्र और जीव शास्त्र के जो नियम है उन नियमों का भी पालन शरीर करता है.
My body translates breath into oxygen in the blood.
तो मेरी जो सांस है उस सांस से जो ऑक्सीजन मुझे प्राणवायु जो मुझे मिलता है वह खून में जाता है.
The blood passes energy through my body.
तो मेरे शरीर से खून बहते रहता है या उसका संचरण हो रहा है.
So it obeys the laws of biology.
तो इस तरीके से हमारा जो शरीर है कि जीव शास्त्र के नियमों का पालन करता है.
Then my body obeys what you could call the laws of lower psychology.
और मेरा जो शरीर है जो निम्न मनोविज्ञान है उन मनोवैज्ञानिक नियमों का भी पालन करता है.
That means the law of instinct.
जैसे कि उत्तेजना है.
The law of perception.
या मैं किसी चीज को ग्राह्य करता हूँ वह.
If you flash a light in my eye, I will look away.
अगर मेरे आँख पर आपने अचानक प्रकाश डाला तो मैं दूसरी ओर देखूंगा.
I won't think about it, it'll just happen.
मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, यह अपने आप होता है.
It's just an instinct.
यह एक उत्तेजना है.
If I look at something, a mental image appears in my mind.
अगर मैं किसी चीज को देखूंगा तो उसकी प्रतिकृति मेरे मस्तिष्क में आएगी.
Just the same as it does for animals.
जैसे कि जानवरों के साथ होती है, प्राणियों के साथ होती है.
So my body obeys these three kinds of law.
तो मेरा जो शरीर है इन तीन प्रकार के नियमों का पालन करता है.
What about my mind?
लेकिन मेरे मन का क्या?
What about your mind?
आपके मन का क्या?
What laws govern the mind?
कौन से नियम है जो आपके मन को चलाते हैं?
We study physics and chemistry and biology at school, but we don't study the laws of the mind.
तो हम जीवशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र इन सब शास्त्रों को हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मन के नियमों का क्या?
But the mind works according to law.
मन भी किन नियमों के कारण चलता है?
It works according to the law of karma.
मन जो है यह कर्म नियमों के द्वारा चलता है.
When we act with an unskillful mind, our mind is affected.
अगर हम अकुशल कर्मों से मन को अगर कृति करते हैं तो उस तरीके से परिणाम हमारे मन के ऊपर होता है.
Our mind becomes more cramped, more dull, more narrow.
हमारा मन जो है अधिक निरुत्साही और संकुचित होता है.
Our mind becomes more painful.
और काफी पीड़ा अपने मन में होती है.
When we act with a skillful mind, our mind develops.
और हम अगर कुशल कर्मों से कार्य करते हैं तो हमारे मन का विकास होता है.
So the law of karma determines the development of the mind.
तो जो कर्म नियम है वह कर्म नियम आपके मन के विकास को बाधित करता है.
If we act skillfully, our mind grows.
अगर हम कुशल कर्मों से कार्य करते हैं तो हमारे मन का विकास होता है.
If we act with an unskillful mind, our mind goes down.
अगर हम अकुशल मन से अगर कार्य करते हैं तो फिर हमारा मन निरुत्साही होता है, निम्न स्तर पे जाता है.
That very briefly is the law of karma.
यह संक्षिप्त में कर्म नियम है.
If we act with greed and hatred and ignorance, well, that leads to greater suffering for us.
अगर लोभ मोह द्वेष के द्वारा अगर हम कार्य करते हैं तो भयानक पीड़ा में हम जाते हैं.
Our mind becomes less capable of experiencing something bigger.
तो हमारा मन जो है जो अधिक विशाल है उसके अनुभव के लिए असक्षम होता है.
Our mind becomes more closed.
हमारा मन अधिक बंद होता है, सिकुड़ा हुआ होता है.
If we act with maitri, with dana, and with awareness, our minds open up, they grow.
अगर हम सजगता से, मैत्री से अगर कार्य करते हैं, तो हमारा मन का विकास होता है और वह खुलता है.
So this is the most important law for us to understand.
तो यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है हमें समझने के लिए.
It's really the law that governs our lives.
यह नियम है जो हमारे जीवन को चलाता है.
And it's the law over which we have real control.
और यह एक ऐसा नियम है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण हो सकता है.
It's in our power to act skillfully. Or unskillfully.
यह आपके हाथ में है या आपके शक्ति में है, आप कुशलता से या अकुशलता से कार्य करना चाहते
हैं. We have to take responsibility for our own karma.
हमारे कर्मों के प्रति हमने स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
But there's one more law.
लेकिन और एक नियम है.
And this is the most interesting in some ways.
और यह बहुत रुचकर है काफी दृष्टिकोण से.
And this is referred to as the Dhamma Niyama.
और इसे हम कहते हैं धम्म नियम.
And this is quite mysterious.
अब यह थोड़ा रहस्यमय है.
Difficult for us to understand.
थोड़ा सा कठिन है हमें समझने के लिए.
But it comes into play when we truly serve the Dhamma.
यह तब सक्रिय होता है जब सही मायने में हम धम्म की सेवा करते हैं.
When we stop serving ourselves and serve the Dhamma Niyama begins to operate.
जब हम
When we stop to serve ourselves.
Yeah.
जब हम अपने स्व की सेवा करना बंद करते हैं, तब धम्म की सेवा या धम्म नियम सक्रिय होते हैं.
Well, think of somebody like Dr. Babasaheb Ambedkar.
अब आप सोचिए एक उदाहरण जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं.
Well, it's obvious to all of us that he didn't live just for himself.
यह बहुत ही स्वाभाविक है, जानना बहुत आसान है कि वे केवल अपने आप के लिए नहीं जिए.
If he'd wanted to, he could have been a very wealthy, very powerful man.
अगर वो चाहते तो बहुत सदन हो सकते थे, बहुत अमीर हो सकते थे, बहुत सत्ताधारी हो सकते थे.
He could have had whatever he wanted.
जो कुछ भी उनको चाहिए था वह सब वो हासिल कर सकते थे.
But he spent his life serving his people.
लेकिन उन्होंने अपना समूचे जीवन अपने लोगों के लिए समर्पित किया.
And at the end of his life, he served the Dhamma.
और अंततः उन्होंने धम्म की सेवा की.
You could say that throughout his life he served the Dhamma.
आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सारा जीवन ही उन्होंने एक दृष्टिकोण से धम्म की सेवा की.
And well, Baba Sahib was a different kind of man.
बाबा साहब बहुत ही अलग व्यक्ति थे.
He's not the sort of person you meet very often.
वो उन व्यक्तियों में नहीं थे जो सामान्य रूप से आप मिल लेते.
Maybe you meet such a man every thousand years.
हजारों साल में ऐसा कोई आदमी हमें मिलता है.
He became like that because of his own karma.
वे वैसे बने अपने कर्मों के कारण.
He became like that because he served the Dhamma.
वो वैसे बने क्योंकि उन्होंने धम्म की सेवा की.
The Dhamma lifted him up beyond himself.
क्योंकि धम्म ने उनको अपने आप से परे पहुंचा दिया.
So he became something more.
तो वो अपने आप से कुछ अधिक बने.
So this Dhamma law comes into operation when we set ourselves aside.
जब हम अपने आप को रास्ते से या अपने अहं को अपने रास्ते से हटा देते हैं, तो कोई तो भी बड़ी बात धम्म के द्वारा आती है.
So it's these two, Kama Niyama and Dhamma Niyama, that are most important for us.
तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह कर्म नियम है और धम्म नियम है.
If we want to serve the Dhamma, we need to know these two laws.
अगर हम धम्म की सेवा करना चाहते हैं, तो इन दो नियमों को हमें जानना जरूरी है.
Just as if you want to build a bridge, you need to know the laws of physics.
अगर आपको किसी पुल को बनाना है या तो आपको भौतिकी नियम पता होने चाहिए.
You need to know about metallurgy and so on.
तो जो खनिज है या जो धातु है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए.
If you want to serve the Dhamma, you need to know karma and dhamma.
तो अगर आपको धम्म की सेवा करना है तो आपको कर्म और धम्म दोनों को जानना जरूरी है.
You need to know those two laws and put them to use.
और इन दोनों नियमों को आपको जानकर उसकी उपयोगिता कैसी करना यह जानना जरूरी है.
If we don't work with these laws, we just go round and round and round.
अगर हम इन नियमों के द्वारा अगर नहीं चलेंगे तो हम चक्राकार तरीके से घूमते ही रह जाएंगे.
We just keep on repeating the same mistakes as we've made before.
हम हमेशा वही उन्हीं गलतियों को करते जाएंगे जो हमने पहले किए.
we go on repeating the same mistakes as our ancestors repeated.
जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की है वही गलतियां हम फिर से दोहराएंगे.
The whole system just goes on.
और वही व्यवस्था फिर से चलती जाएगी.
It's amazing, isn't it, that for so many thousand years caste went on in India.
यह बहुत ही आश्चर्यकारक है कि हजारों साल तक जाति जो है वह चलती रही.
Because nobody acted differently.
क्योंकि किसी ने भी हटकर प्रयास नहीं किए.
Everybody kept on reproducing the same patterns.
हर व्यक्ति ने उसी क्या कहते हैं व्यवस्था को पुनर्निर्माण या उसी की सेवा की.
But Baba Sahib came and said no.
लेकिन बाबा साहब आए और उन्होंने कहा कि नहीं.
Take responsibility for what you do.
आप अपने आप की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए.
Don't keep repeating the patterns of the past.
जो भूतकाल के जो व्यवस्थाएं हैं उनमें आप मत जाइए.
This pattern has a form.
क्योंकि उस व्यवस्था का एक आकार है.
It starts with craving.
क्योंकि वह लोभ.
Yeah.
उसकी शुरुआत जो है वह लोभ से होती है.
We want something that we think will give us satisfaction.
हम ऐसी चीज चाहते हैं जिससे हमें समाधान मिले.
We grasp onto that.
और हम उसके ऊपर हमारी पकड़ होनी चाहिए.
We build our lives around that.
और उसके ऊपर ही उसके बुनियाद के आधार पर ही हम अपने जीवन को बनाते हैं.
That brings us suffering.
और यह हमारे लिए दुख लाता है, पीड़ाएं लाता है.
So we react to that suffering with more craving.
तो हम उस लोभ को अधिक उग्र रूप से प्रतिसाद देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं.
That craving leads us to grasp and cling on.
और वह जो लोभ है, वह जो आसक्ति है, हमें पक्का बनाती है, पकड़ में लाती है.
That forms our lives.
और उसी के आधार पर फिर हमारा जीवन आधारित होता है.
That brings us suffering.
और वह हमारे लिए दुख लाता है.
And off we go again.
और फिर हम उसी बात को दोहराते रहते हैं.
We react to our suffering, to our pain with more craving.
और हम हमारे दुख को अधिक लोभी होकर प्रतिक्रियाएं देते हैं.
And there's no escape.
और वहां से फिर हमारा छुटकारा नहीं होता.
But it can be different.
लेकिन यह अलग हो सकता है.
We can take the path of skillful action.
हम जो कुशल कर्मों का या कुशलता का जो मार्ग है उस मार्ग को हम अपना सकते हैं.
If instead of craving, we have confidence, have faith in the Dhamma.
लोभ के बजाय हम धम्म के ऊपर ज्यादा आत्मविश्वास रख सकते हैं.
If we see something beyond this cycle and have faith in it, we will move beyond it.
अगर हम इस चक्रण के बजाय या उसके अलावा और कुछ देखते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं.
We will move beyond our suffering.
और हमारे दुखों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं.
We will come to experience great satisfaction.
और जो महान समाधान है, संतुष्टि है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं.
We will feel content with ourselves.
और हम अपने आप से संतुष्ट रहेंगे.
Because we're acting well.
क्योंकि हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी कृति हम करेंगे.
That will give us a lot of energy, a lot of joy.
और वह हमें अधिक आनंद देगा, अधिक ऊर्जा देगा.
It will give us a lot of priti.
और हमें यह एक प्रीति देगा, आनंद देगा.
If we continue to act skillfully, that priti will gradually lead to great calmness.
और वह आनंद हमें उच्च शांति की ओर ले जाएगा.
We will feel very satisfied, very still.
और हम तब स्थिर महसूस करेंगे, अपने आप में हम शांति महसूस करेंगे.
Our bodies will feel very, very satisfied and content.
और हमारा शरीर भी हमें समाधानी महसूस होगा.
Our minds will be still and happy.
और हमारे मन जो है वह स्थिर होंगे, संतुष्ट होंगे.
That will lead to a deep, deep happiness.
और यह हमें गहरी गहरा आनंद देंगे.
That will lead us to experience deep meditation.
और यह हमें गहरे ध्यान में भी ले जाएगा.
This is what happens when we take the path of skillful action.
यह होता है अगर हम कुशल कर्मों के मार्ग को अपनाते हैं.
We move out of the cycles of the past.
हमारा जो भूतकाल का या गतकाल का जो चंक्रमण है या जो रास्ता है उस रास्ते को हम छोड़ देते.
This is what Baba Sahib did in 1956 here. 1956
में यही बाबा साहब ने यही किया.
He moved out of the cycles of the past.
जो पुराने जो परंपराएं थे या जो चक्र थे, उन चक्रों से उन्होंने हमें मुक्त किया.
He took a positive step of karma.
उन्होंने कुशल कर्मों का रास्ता अपनाया.
And he moved beyond the past.
और उस भूतकाल से अपने आप की उन्होंने मुक्ति की.
If we take this step far enough, it will have a big effect.
और अगर हम ज्यादा दूर तक यह कदम बढ़ाते हैं तो इसका प्रभाव होगा.
If we enter into deep meditation, if we become very deeply concentrated, something new comes.
अगर आप गहराई से सजग होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो कोई नई चीज उससे उभर कर आती है.
We see the truth.
हम तब सत्य को देखते हैं.
We see directly with our own eyes the real nature of this life.
और हम अपने स्वयं के आंख से जो सही दर्शन है जीवन का उसे देखने में सक्षम होते हैं.
What arises in us is what the Buddha called Yathabhuta Jnana Darshana.
बुद्ध इसे एक शब्द में कहते हैं जिसे हम कहते हैं यथाभूत ज्ञान दर्शन.
Seeing things as they really are.
जैसे चीजें हैं वैसी उसे देखना.
We move beyond self.
हम अपने स्व से परे जाते हैं, उससे आगे चलते हैं.
We're liberated from all the sufferings of self.
और जो स्वयं की जो दुख है या जो पीड़ाएं हैं, उनसे हम अपने आप को मुक्त करते हैं.
We're able to serve the Dhamma freely and fully.
और पूरी तरह हम फिर धम्म की सेवा कर पाते हैं और उसे समझ पाते हैं.
We move beyond these ordinary attachments.
और जो सामान्य आसक्तियां हैं, उन सामान्य आसक्तियों से हम अपने आप को परे करते हैं.
We don't feel drawn into the old ways.
जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं हैं, उसमें हम फिर से खींचे नहीं चले जाते.
We're no longer interested in the old ways.
क्योंकि उस पुराने जो धारणा है, जो रास्ते है, उसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती.
We become free.
और हम फिर मुक्त होते हैं.
And everything that can tie us into the old ways is gone from us.
और जो कुछ भी बात हमें पुरानी रूढ़ी परंपराएं पकड़ कर रखती है, वह हमसे दूर चली जाती है.
This is the promise before us.
और यह हमारे लिए क्या है, वादा है अगर हम ऐसा करते हैं.
This is what we need to understand.
यह हमें समझना बेहद जरूरी है.
We need to understand the Dhamma.
हमें धम्म का आचरण करना जरूरी है.
We need to know the Dhamma.
हमें धम्म को जानना जरूरी है.
Then we can know the forces that we work with.
तभी हमें पता चलेगा कि किन ऊर्जाओं के साथ हम कार्य कर रहे हैं.
We know the force of karma.
हमें कर्म की शक्ति पता है, उसकी ऊर्जा पता है.
That force of karma that can lead us out of the old suffering.
तो पुराने जो पीड़ाएं हैं, दुख है, उससे हमें यह कर्म मुक्त करते हैं.
The force of dharma that can lead us to serve the world.
और जो धम्म नियम है या धर्म का जो शक्ति है, वह हमें अधिक उसकी सेवा करने के लिए मदद करता है.
We need to understand these processes very clearly.
और यह जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है.
It's the most important knowledge we could have.
यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हम पा सकते हैं.
Because it's the knowledge that will give us freedom and will help us to free others.
यह ज्ञान आपकी अपनी मुक्ति करेगा और औरों को मुक्त करने के लिए मदद करेगा.
This is the true science of life.
यह जीवन का सही विज्ञान है.
Maybe it's the true art of living.
यह जीने की सही कला भी है.
This is what we really need to know.
यह हमें जानना जरूरी है.
We need not only to know it, we need to be convinced by it.
हमें केवल जानना जरूरी नहीं है, इससे साथ हमारी सहमति होनी चाहिए.
We need to be convinced that our own best future lies in skillful karma.
हमें इस बात से सहमति होनी चाहिए कि हमारा सबसे अच्छा जो भविष्य है, वह हमारे कर्मों के ऊपर या हमारे हाथ में है.
We need to know that if we want to serve the Dhamma, we have to develop ourselves to the point at which we transcend ourselves.
तो अगर हमें धम्म की सेवा करनी है, तो उस बिंदु तक हमें जाना है जिसमें हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं.
So, brothers and sisters, this is what we mean by knowing the Dhamma.
तो भाई और बहनों, यही अर्थ है धम्म को जानने का.
We mean knowing these fundamental laws that determine our happiness and freedom.
तो यह मूलभूत ऐसे नियम है जो हमारे सुख को बांधते हैं, सुख को लाते हैं.
So you need to ask yourselves.
तो आपने अपने आप को यह पूछना चाहिए.
Do you understand this?
क्या आप इसे समझते हैं?
Do you believe in it?
क्या आपका इसके ऊपर विश्वास है?
Are you convinced by it?
क्या आप इससे सहमत हैं?
If you want to serve the Dhamma, you need to be convinced by these laws.
अगर आप धम्म की सेवा करना चाहते हैं, तो इन नियमों के साथ आपकी सहमति होनी चाहिए.
You need to build your life on these laws.
और आपका जीवन इन नियमों के ऊपर आधारित होना चाहिए.
Anything else, we will not complete this task of Baba Sahib's.
अगर यह नहीं होगा या कोई और बात बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं कर पाएगी.
Nothing else will bring the Dhamma revolution.
कोई भी बात फिर धम्म क्रांति को नहीं लाएगा.
So, brothers and sisters, this is what I mean by knowing Dhamma.
तो भाई और बहनों, यही मेरा अर्थ है धम्म को, धम्म क्या है या धम्म को जानना क्या है इसे कहने का.
And I hope that you've all gained something from this.
और मुझे आशा है कि आपको कुछ तो भी इससे मिला होगा.
Not enough, however, just to know Dhamma.
केवल धम्म को जानना जरूरी नहीं है.
You need to practice Dhamma.
धम्म का आचरण करना जरूरी है.
Tomorrow night we will see what that means.
और कल के दोपहर को हम देखेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है.
नमो बुद्धाय. जय भीम.